इतना बता दे भगवान, लगी ये कैसी लगा रहा है मुझे, में रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहा है। इतना बता दे भगवान, लगी ये कैसी लगा रहा है मुझे, में रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहा है। हृदय भी तुम हो, तुम ही प्रियतम, प्रेम भी तुम हो, तुम ही हो प्रेमी। हृदय भी तुम हो, तुम ही हो प्रियतम, प्रेम भी तुम हो, तुम ही हो प्रेमी। पुकारता मन तुम्ही को क्यों, फिर तू ही जो दिल में समा रहा है। जरा तू इतना बता दे भगवान, लगी कैसी लगा रहा है।
ओम शांति। किसी समय विजयनगर साम्राज्य था दक्षिण भारत में, जहां पर राजा कृष्णदेव राय थे, और आए दिन दरबार में वाद विवाद चलते रहता था। एक तरफ तेनालीरामा और दूसरी तरफ राजगुरु तथाचार्य। एक बार ये वाद हुआ कि यदि मनुष्य को आवश्यकता हो तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तथाचार्य कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। तेनालीरामा कहता है ऐसा हो सकता है, अगर किसी व्यक्ति को आवश्यकता है वो कुछ भी करेगा मजबूर होकर। एक शर्त रखी जाती है, क्योंकि ठंड का मौसम है, शीत ऋतु है, तो यह घोषणा कराई जाती है कि इस शीत ऋतु में, इस शरद ऋतु में, यदि कोई एक वस्त्र में, केवल एक वस्त्र में सारी रात नदी के पानी में खड़ा रहे तो उसे 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। सारे नगर में घोषणा हो जाती है, सब कहते कौन जाएगा मरने, पूरी रात एक प्रहर भी रुकना कठिन है, इतनी ठंड है, और उसमें पूरी रात कौन रुकेगा पानी में। इंतजार होता है राज दरबार में, कौन आता है कौन आता है। राजगुरु कहता है कोई नहीं आने वाला मरने। शाम होते होते एक बूढ़ा व्यक्ति आता है, वो कहता है मैं तैयार हूं। लोग कहते हैं वहां खड़े रहना अर्थात मृत्यु, तुम ही नहीं बचोगे तो क्या करोगे। वो कहता है क्या करूं, मेरी लाचारी है, पत्नी बीमार है, बच्ची की शादी करनी है, वगैरह वगैरह बहुत कारण बताता है। तो रात्रि को इतनी ज्यादा ठंड, माइनस में टेम्परेचर, और नदी का पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा। वो आदमी रात भर एक वस्त्र पहनकर उस पानी में खड़ा, थिटूरता हुआ खड़ा रहता है। सुबह होती है, तेनालीरामा भी वहीं सो जाता है, उसको समझाता है क्योंकि वो बड़ा दयालु है। कहता है अभी भी जिद छोड़ दो, अगर चाहे तो। राजा कहता है मैं तुमको वैसे ही पैसे दे दूंगा, तुमको कितने पैसे चाहिए, कितने। तो कहता है मैं निर्धन हूं। राजा कृष्णदेव राय कहते हैं मैं तुझे अभी पैसे दे देता हूं। वो कहता है फिर मेरे आत्मसम्मान का क्या होगा, मैं किसी से ऐसे पैसे नहीं ले सकता, आप तो दे दोगे पर मेरा आत्मसम्मान उसका क्या। सुबह राजा तेनालीरामा और तथाचार्य सब आते हैं और कहते हैं कि ये शर्त जीत गया, परंतु वो राजगुरु इतने जल्दी हार मानने वाला नहीं है। वो कहते हैं बताओ तुमने ये कैसे किया। शर्त थी कि वहां खड़े रहना है और बिना तिनके का भी सहारा नहीं लेना है। सब लोग कहते हैं, सैनिकों से पूछा जाता है क्या ये बाहर निकला, सब कहते हैं नहीं ये रात भर खड़ा था। उससे पूछा जाता है बताओ कैसे किया तुमने ये, तुम जिंदा कैसे बच गए। वो कहते हैं रात में मैंने दूर मंदिर की ओर देखा, वहां एक दीप जल रहा था और उसकी लौ पे मैंने अपनी बुद्धि एकाग्र कर ली और उस लौ की उष्णता अपने अंदर धारण कर ली। बस यही किया रात भर और प्रभु का नाम जपता रहा। राजगुरु कहता है देखा धोखाधड़ी पकड़ी गई ना, तो इसने सहारा लिया है, बिल्कुल इसे इनाम नहीं मिलेगा क्योंकि इसने शर्त ही नहीं मानी। तो राजा भी कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि शर्त तो यही थी एक तिनका भी की सहारा नहीं लेना है, और इसने तो सहारा लिया। अब तेनालीरामा को बेचारे को चिंता होती है, अन्याय हो रहा है, क्या करें। तो वो कहता है, दूसरे दिन जाता है महल में, कहता है मेरे घर में राजभोज का आयोजन किया है, सबको आना है, और सबको बुलाता है, राजा रानियां सब लोग बैठते हैं, और राजगुरु जो कहते हैं उनके लिए कहते हैं आपके लिए विशेष भोजन का प्रबंध किया है। सब लोग खाना चालू कर देते हैं पर वो उसकी थाली में कुछ नहीं, हलवा आता है तो दूर रखते हैं तेनालीरामा, और उसको कहते हैं, वो कहता है मेरा कहां है। वो कहता है ये क्या हलवा आपका रखा हुआ है, पर थाली में परोस। वो कहता है सुगंध तो आ रही है ना। वो कहते हैं आ रही है, तो बस सुगंध से ही पेट भर लो। वो कहते हैं पर सुगंध से पेट कैसे भरा जा सकता है। वैसे ही जैसे वो जो बूढ़ा ब्राह्मण पानी में रहा और वहां रहते उसने वहां की उष्णता को धारण कर ली, वैसे आप भी तो कर सकते हो। तब बुद्धि का ताला खुलता है, राजा को भी समझ में आता है ये क्या है। तो ये कहानी में एक चीज दिखाई है, वो बूढ़ा ब्राह्मण, वो बूढ़ा व्यक्ति रात भर कहां रहता है, पानी में खड़ा रहता है ठिठुरती ठंड में, फिर भी शरीर का प्रभाव अपने मन पर नहीं पड़ने देता, क्योंकि क्या करता है, सारी बुद्धि को उस दिए की लौ पर एकाग्र कर देता है। यहां बैठा है, यहां खड़ा है, परंतु मंदिर दूर है, और अनुभव करता है कि वो प्रकाश, वो उष्मा मेरे अंदर आ रही है और प्रकृति के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। आत्मा इस संसार में यहां रह सकती है, परंतु यदि उसकी बुद्धि उस परम धाम की ज्योति के ऊपर एकाग्र हो जाए, उस परम तत्व में एकाग्र हो जाए, तो यहां का कोई भी प्रभाव उसे प्रभावित नहीं कर सकता। यदि उसे वो अनुभव हो गया तो, और दूसरी बात जो भोजन की थी वो भी सत्य हो सकती है। यदि कोई स्वीकार ही कर ले कि मुझे भूख ही नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ है, तो कितना दिन भी भूखा रह सकता है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, संकल्प है केवल। ये लोग इतना लंबा लंबा उपवास कैसे कर लेते हैं, इसी के आधार से, आवश्यकता ही नहीं है इसकी। जैन लोग कितने लंबे लंबे उपवास करते हैं। सारी बात मन की है और अनुभव की है। तो कल की जो अव्यक्त वाणी थी वो किस पर थी? ज्ञान तो बहुत है, भाषण तो बाप दादा से भी अच्छा कर लेते हो। सुबह की अव्यक्त वाणी संडे वाली, बाबा से भी अच्छा भाषण कर लेते हैं। अनुभव हो जाए उस परमात्मा का, उस प्रभु प्रेम का, जैसे यहां भक्त कह रहा है, प्राण भी तुम हो, तुम ही हो स्पंदन, नयन भी तुम हो, तुम ही हो ज्योति, तुम ही को लेकर तुम्हें ही ढूंढू, नहीं ये लीला दिखा रहा है, जरा तू इतना बता दे भगवान, लगी ये कैसी लगा रहा है, मुझी में रहकर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहा है। हृदय भी तुम हो, तुम ही हो प्रियतम, प्रेम भी तुम हो, तुम ही हो प्रेमी, पुकारता मन तुम ही को क्यों फिर, तुम ही जो दिल में समा रहे हो, भाव भी तुम हो, तुम ही वंदना, संगीत भी तुम ही रचना, स्तुति तुम्हारी तुम्हें सुनाऊं, यह कैसी पूजा करा रहे हो, कर्म भी तुम हो, तुम ही हो करता, धर्म भी तुम हो, तुम ही हो धरता, निमित्त कारण मुझे बनाकर ये नाच कैसा नचा रहे हो। प्रभु प्रेम में आत्मा ऐसी डूबी हुई है कि उसको ऐसे लग रहा है कि जैसे सब कुछ वही करा रहा है। ये जो भाव है सर्वव्यापी का कहां से आया, किसने ये धारणा बनाई? हमने कब? संगम युग पर, क्योंकि सब जगह वही दिखाई देता है, सब जगह वही समाया हुआ है, बुद्धि में जो है वही दिखाई देता है। तुम तो यही कहीं बाबा मेरे आसपास हो, तो सर्वव्यापी की धारणा किसने बनाई? हमने, वही भक्तों ने थोड़ी थोड़ी उधर कॉपी कर ली। तो कल की वाणी क्या कहा बाबा ने कल, पहले आप बताएंगे। कल की मुरली थी 30 जनवरी 2010 की रिकॉर्डेड मुरली। क्या क्या बताया? स्वमान का स्वरूप बनना है। और क्या बताया? ज्ञान योग की अनुभूति करनी है। और क्या बताया? और जो जीवन योगी है और योगी जीवन है। और टिकट कब कटने वाली है सबकी? सबकी टिकट कटने वाली है होलसेल में वो भी। और क्या कहा? शुभ भावना, शुभ कामना सबके लिए, प्रेम अर्थात शुभ भावना। तुम प्रकृति को चेंज कर सकते हो, तो मनुष्य आत्मा को चेंज नहीं कर सकती? ये कैसे कह सकती? ये बदलेगा नहीं, इसको समझाना टाइम वेस्ट है। हाँ, कौन सा बच्चा? लास्ट भी वाला भी प्यारा है उसको, स्नेह है तो सब कुछ है, और गिरे हुए को उठाना, और तो इस मुरली में लगभग 10 बातें हैं। सबसे पहली बात निरीक्षण, बाबा ने अपना बताया वो क्या है, कौन किसको देख रहा है, इस ब्राह्मण संसार का रचयिता जो है वो किसको देख रहा है, एक एक ब्राह्मण आत्मा को देख रहा है। कौन आया है? इस ब्राह्मण संसार का जो रचयिता है वो आया है इस ब्राह्मण परिवार में, और देख क्या रहा है, एक एक ब्राह्मण को देख रहा है, एक एक में क्या क्या विशेषता है, एक एक कोटों में कोई है, बाप के दिल में बच्चे समाए हैं और दिल से दिल का प्यार दे रहे हैं, ये उसका ऑब्जर्वेशन है। ये बाबा ने देखा आकर कि कैसे आए हैं यहां पर, किस में आए हो, किस विमान में आए हो, आगे पूछा है, स्नेह के विमान में आए हो, प्रेम के विमान में आए हो, तो तब से पहले तो उसने ये देखा। दूसरी बात, चैलेंज, क्या चैलेंज करते हो दुनिया की आत्माओं को तुम? योगी जीवन वाले हैं हम, एक दो घंटा योगी वाले नहीं है, योग लगाने वाले योगी नहीं है, योगी जीवन वाले योगी है हम। योगी जीवन अर्थात सदा, जीवन हमेशा सदा होता है, जीवन सदा काल का होता है, एक दो घंटे का नहीं होता है, निरंतर होता है, तो हम योगी जीवन वाले हैं, सदा के योगी है, योग लगाने वाले नहीं, योग कर रहे तब भी योगी, कर्म कर रहे तब कर्म योगी। तो हमारी ये चैलेंज है, चुनौती है संसार को कि हम ये है, और जब चुनौती दी जाती है तो बहुत चौकन्ना अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि दुनिया वाले कभी भी आके पूछेंगे अब तुम योगी हो? यदि भोग विलास में डूबा है कोई और अचानक को हमने घोषणा कर दी थी बाहर कि हम योगी जीवन वाले, तो वो हमको कब पकड़ेंगे? जब जरा सा भी विलासिता में डूबे होंगे तो आकर पकड़ लेंगे कि तुम तो कह रहे थे कि तुम योगी हो, क्या ये योग की निशानी है? तो चैलेंज, हमने दुनिया को क्या क्या चैलेंज की है, ये है होमवर्क, इस पर आज पॉइंट्स लिखनी है। कितनी लिखेंगे? 21 बातें। एक तो बाबा ने यहां बता दी, हमने ये चैलेंज की है कि हम योगी जीवन वाले हैं, और क्या क्या हमने चैलेंज की है, ठीक है, ये है होमवर्क। कई मुरलियों में आया है ये कि ये तुम्हारी चैलेंज है, तुम दुनिया को ये कहते हो, क्या क्या कहते हो, दावे तो बहुत करते हो, पर हमारी स्थिति उन नेताओं जैसी ना हो जाए, हम सड़क बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, और बाद में सब भूल गया। तो हमारी दुनिया को चैलेंज है, संसार की आत्माओं को चैलेंज है, हम ये करके दिखाएंगे। एक उदाहरण दो, कौन सा? नहीं नहीं, चैलेंज क्या देनी है दुनिया वालों को, ये तो हमारी बात है। हाँ, हम इस धरा को, इस नर्क को स्वर्ग बना के दिखाएंगे, ये हमारी चैलेंज है। और एक हाथ, कोई और? गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान जीवन व्यतीत करेंगे आग और कपास पर, बीच में आग नहीं लगेगी। उसके दो कारण, आग न लगने के दो कारण, बाबा साथ है, और दूसरा कारण बाबा साथ है, दूसरा कारण पवित्रता। हमारा स्वधर्म है, लास्ट संडे की मुरली, अभी मुरली चली है, लास्ट संडे। तो ऐसी बहुत सारी चैलेंजेस है। तो पहली बात थी बाबा का ऑब्जर्वेशन, बाबा ने क्या क्या देखा, बाबा ने इस परिवार को देखा। एक एक आत्मा को देखा, एक एक की विशेषता को देखा। बाबा को एक एक की विशेषता स्पष्ट है, चाहे तुम ना जानो पर उसको पता है हर एक कितना विशेष है। हर एक कोटों में कोई है, कोई भी साधारण नहीं है। यहाँ पर लास्ट बच्चे से भी बाप का प्यार है, हर एक से दिल का प्यार है, दिल का दिल से प्यार दे रहे हैं। दूसरी बात, चैलेंज। तीसरी बात, बाबा ने कहा हर एक बच्चे के मस्तक पर बाप दादा भाग्य का तिलक, भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? भाग्य का सितारा चमकता हुआ। और यहां फिर दो बातें हैं, सोमान यदि है तो वहां पर देहभान आ नहीं सकता, और जहां मोहब्बत है वहां पर मेहनत नहीं हो सकती। बच्चे सामान तो लेते हैं, सोचते तो बहुत है पर मेहनत भी करते हैं। बाप दादा को अच्छा नहीं लगता, क्या नहीं अच्छा लगता? बच्चे मेहनत कर रहे हैं। अभी दूसरा होमवर्क, होमवर्क अलग जगह लिखो, बाप दादा को क्या क्या अच्छा नहीं लगता। भगवान की भी पसंद नापसंद होती है, जैसे हमारी पसंद नापसंद है वैसे उसकी भी पसंद नापसंद है। तो भगवान को क्या क्या पसंद नहीं है, उदाहरण, कभी कभी यदा कदा मिट्टी में मिल जाके मिलते हो, श्रृंगार बिगड़ते हो, और अलबेलापन कोशिश कर रहे हैं बाबा, हम कोशिश कर रहे हैं, ये बाबा को पसंद नहीं है। और मुरझा जाना बिल्कुल बाबा को पसंद नहीं है, तुम तो खिले हुए फूल गुलाब, और गेगे पसंद नहीं है, बाबा को पत्र नहीं लिखते बिल्कुल पसंद नहीं है बाबा को। पत्र लिख के सारा बताओ तुम क्या करते हो सुबह से लेकर रात तक, मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी हूं, मैं कोई थॉट रीडर हूं जो तुम्हारा सब पता करूं, मुझे बताओ तुम कैसे हो। कभी कहते सब बताओ, कभी कहते खाली ओके, ज्यादा मत लिखना, टाइम किसके पास है तुम्हारा पढ़ने के लिए। और गे गे की भाषा उसे पसंद नहीं, कभी कभी की भाषा उसे पसंद नहीं, सिंगल उसे पसंद नहीं, डबल उसको पसंद है हर चीज। खाना खाते हो और मुझे भूल जाते हो, कमाल है तुम्हारी भी, शर्म नहीं आती तुमको? बाप को भूलते हो, जानवर अपने बाप को नहीं भूलते, तुम भूलते हो? लॉ अपने हाथ में उठाना बाप को पसंद नहीं, और क्या क्या फरियाद करना बाबा को पसंद नहीं, तुम्हें याद करना है फरियाद नहीं, रोना बिल्कुल पसंद नहीं है बाबा को, बच्चे रोते हैं बाबा को पसंद नहीं है रोना बिना, रूठना उदास होना, ब्राह्मणी से रूठते हो और सेंटर आना छोड़ देते हो, मैंने क्या किया, मेरा क्या दोष, उससे रूठ गया और मुझे छोड़ दिया, कमाल है तुम्हारी। ये मेरे से नहीं होता, बहुत मुश्किल है, कठिन है बाबा, बाबा इसकी बुद्धि का ताला खोलो, उसकी बुद्धि का ताला खोलो। हाँ तो वो वाली भी बात है, ब्रह्मा वाली भी। तो तीसरा, चमकता हुआ सितारा हमेशा देखना चाहते हैं। तो बाबा चाहते हैं कि हर एक बच्चा सोमानधारी हो, अनुभवी मूर्त हो। चौथी बात, अमृत वेला बाबा ने क्या क्या देखा। अमृत वेला बाबा ने कहा बाप क्या करते हैं, सैर करते हैं, देखते हैं एक एक ब्राह्मण को देखते हैं अमृत वेला। तो क्या देखा यहां पर, और वही बात, बहुत सारी बातें यहां रिपीट है। यहां पर बाबा ने देखा कि बच्चे क्या कह रहे, मेहनत कर रहे हैं। क्या कहते हैं, हम सोच रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सोमान में स्थित होने की कभी कभी हो पाते, कभी नहीं हो पाते। बाबा ये मेहनत नहीं देख सकते, बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें क्या बनना है, समान के अनुभव भी मूर्त बनना है, क्योंकि तुम्हें अनुभव किस, अनुभव की अथॉरिटी किसने दी है, जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है उसने तुमको अनुभव की अथॉरिटी दी है, इसके लिए अनुभवी मूर्त बनना है, समान का अनुभव करना है, वरदान का अनुभव करना है, तभी वरदान फलीभूत होगा, नहीं तो वरदान फलीभूत नहीं होगा। अनुभव को बढ़ाना है, एक्सपीरियंस को बढ़ाना है अपने। बाबा ने यहां कहा जैसे चीनी का अनुभव जब होता है तो क्या होता है, कोई कितना भी बदलना चाहे बदलते हो नहीं, क्योंकि हमने टेस्ट किया है, हमको पता है। उसी तरह मुरली में तो नहीं है अतीन्द्रिय सुख का, जिसने अनुभव कर लिया उसको पता है ये अनुभव ऐसा है, जिसने अनुभव कर लिया संपूर्ण पवित्रता का, उसके लिए यह प्रश्न नहीं है ये संसार कैसे चलेगा, बहुत मुश्किल है ब्रह्मचर्य का पालन करना। अरे उसने अनुभव कर लिया है अपने स्वरूप का, अपने वास्तविक स्थिति का, कि ये मेरा स्वरूप है। जब मैं संपूर्ण पवित्र स्थिति में स्थित हूं, कुछ भी टच नहीं कर पाता, इतनी पावरफुल स्टेज है आंतरिक। तो जहां अनुभव होता है, चाहे दुनिया हमको कह दे कि ये जो सूरज है ना ये प्रकाश नहीं देता है, ये चंद्रमा प्रकाश देता है, तो मानेंगे? नहीं मानेंगे ना, क्योंकि हमको पता है ये सूरज ही प्रकाश देता है, ऐसा निश्चय। ब्रह्मा भी आके कह दे कि मुझ में भगवान नहीं आता, तो हम कहेंगे हटाओ तुम में ही आता है, ऐसा निश्चय है, संपूर्ण निश्चय। तो अनुभव की अथॉरिटी बनना है। बाबा ने कहा खुद ही अनुभव स्वरूप में, समान स्वरूप में जब स्थित होते हो तो जहां समान है वहां समर्थि है, जहां समान में स्मृति है वहां समर्थि कर्म में दिखाई देगी। स्मृति है वहां क्या होगा, हर कर्म में समर्थि होगी। अगर कर्म में स्मृति ही नहीं है तो समर्थि भी नहीं होगी उन कर्मों में, कर्म बहुत ढीले ढाले होंगे, हल्के होंगे। तो ये चौथी बात। पांचवी, यहां पर और विस्तार किया है मेहनत का कारण। तो समझा मेहनत का कारण क्या है, बाबा ने पूछा। यहां पैराग्राफ पूरा हुआ, नेक्स्ट पैराग्राफ। मेहनत का कारण क्या है, तो मेहनत का कारण है दो, एक तो मोहब्बत से नहीं करते और दूसरा अनुभवी मूर्त होकर नहीं करते, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है तुमको, इसलिए मेहनत यहां लगती है तुमको। बाबा चाहते हर चीज सहज हो, सरल हो। उसके बाद में सिक्स पॉइंट, अचानक जो कुछ होना है अचानक होना है। बाबा ने एक्सीडेंट का उदाहरण दिया और भूकंप का उदाहरण दिया, अर्थक्वेक, एक साथ आत्माओं की टिकट कटेगी, सब जाएगी। तो क्या ये कहते रहोगे कि मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं समान में स्थित होने का अभ्यास कर रहा हूं, अनुभवी मूर्त होने का अभ्यास कर रहा हूं, हर समान का अनुभव हो। एक जगह ये भी कहा बाबा ने, अगर इन समान को याद करते रहो, सोचते रहो, तो ये समान की माला बन जाएगी। और क्या होगा, क्या कहा है, समान की क्या बनेगी, माला बन जाएगी और तुम उस स्वरूप में स्थित हो जाओगे, समान के स्वरूप में। सोचते रहोगे समान के बारे में, उसका अनुभव करते रहोगे, तो समान की माला बनेगी, उस स्वरूप में स्थित हो जाओगे, अनुभवी मूर्त बन जाओगे। और अनुभवी को माया हिला नहीं सकती। दूसरा, जहां अनुभवी मूर्त है, जहां अनुभव है, वहां पर देहभान आ नहीं सकता। तो देहभान और माया, ये दो चीजें समीप नहीं आएगी। अगर अनुभव हो गया है तो अचानक एवर रेडी, बाबा ने कहा लंबे समय का अभ्यास चाहिए, लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए। क्या तुम एवर रेडी हो, अभी अगर कहा जाए चलो तो एवर रेडी हो? तो सिक्स पॉइंट, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का पुरुषार्थ, ये बाकी मुरलियों में आते रहता है, यहां पर भी कहा। उसके बाद में सेवेंथ, यहां पर एक उदाहरण दिया है नाम का। क्या उदाहरण दिया, शरीर का नाम कैसे पूरा अंदर घुसा हुआ है तो वो देहभान ना, क्योंकि वो जन्म का शरीर का नाम है। अगर कोई किसी आपके नामधारी को कोई पुकारता है तो आप पीछे मुड़ के देखोगे कि मुझे पुकारा है, आपको नहीं पुकारा, आपके नामधारी को पुकारा है। ये एक उदाहरण। दूसरा और नाम का उदाहरण दिया है, कौन सा, और एक ऐसा ही उदाहरण है वहीं पर नाम के बारे में। भीड़ में भी कोई पुकारता है, क्या उदाहरण दिया, एक और एक उदाहरण नाम का ही। नाम के दो उदाहरण है, एक तो ये कि हमारे नाम का कोई दूसरा है तो हम देखेंगे, और दूसरा अभी बोलो ना, अगर कोई दूसरे नाम से, ये है दूसरा, अगर कोई दूसरे नाम से हमको पुकारे, पुकार हमको यहां है पर दूसरे नाम से, तो हम देखेंगे क्या, नहीं देखेंगे। तो नाम और शरीर, उसी तरह ये तीन चीजें अंदर समा जाए, कौन सी, समान, स्वराज्य अधिकारी और अनुभवी मूर्त। जैसे वो नाम अंदर घुस गया है पूरा, रात को कोई उठाए और कहे तुम्हारा नाम क्या है, तो हम कहेंगे अभी मैं नींद में हूं, मुझे याद नहीं आ रहा है, चलो नाम छोड़ दो, कोई ये पूछे कि तुम्हारा लौकिक घर तुम कहां से हो लौकिक में, तो भी बता देंगे। लौकिक घर का नाम एड्रेस पूछे वो भी बता देंगे, पिताजी का नाम पूछे वो भी बता देंगे। कितना गहराई में चला गया है वो सारा समाया। उसी तरह स्वमानधारी, उसी तरह स्वराज्य अधिकारी, उसी तरह अनुभवी मूर्त, ये तीन चीजें भी उतनी ही गहराई में समा जाए। क्या करेंगे इसके लिए, इतनी गहराई कैसे आए? ये सब का उत्तर कल जो शाम को मुरली चली उसका आधे उत्तर सुबह की मुरली में है। एक एक पॉइंट को सोचो, एक एक पॉइंट में क्या शक्ति है, एक एक ज्ञान की पॉइंट में कैसी शक्ति है, कितनी शक्ति है, एक एक पॉइंट को कैसे प्रैक्टिकल में लाए, इसके इसका चिंतन करो। पॉइंट स्वरूप नहीं बनना है, ज्ञान की पॉइंट को धारण कितनी की है, इस पर मार्क्स है। उसके लिए बहुत एकांत, उसके लिए बहुत मौन, अंतर्मुखता, एकांत में जाके चिंतन करना है कि इस ज्ञान के पॉइंट को मैं कैसे यूज करूं। उसी को तो महावीर कहेंगे, शत्रु आ गया, दुश्मन आ गया और फिर हम शस्त्र चलाना ही नहीं जाने, तो उसको महावीर थोड़ी करेंगे, ऐसे ही चक्र मिल जाएगा क्या? विजय चक्र। इधर कौन सा मिलता है? विजय। और उधर कौन सा मिलता है? अनेक प्रकार के चक्र। एक है परमवीर चक्र, यह है परमात्मा वीर चक्र, परमात्मा के वीर का चक्र। तो यहां पर ये चक्र मिलते हैं, वहां वो चक्र मिलते हैं। तो ये है सातवीं पॉइंट। अभी मुख्य सबसे जो मुरली में है वो है यहां पर एट्थ, GYDS, GYDS। बाबा ने कहा चारों ही सब्जेक्ट में क्या बनो, अनुभवी मूर्त बनो। ज्ञान में अनुभवी मूर्त अर्थात लाइट माइट, हर कर्म में लाइट और माइट हो। ज्ञान में अनुभवी मूर्त अर्थात लाइट और माइट, हर ज्ञान युक्त, ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान अर्थात ही लाइट माइट, लाइट अर्थात प्रकाश, माइट अर्थात शक्ति। तो हर कर्म, हर ज्ञान की पॉइंट प्रकाश के रूप में स्वीकार करनी है, शक्ति के रूप में स्वीकार करनी है, शस्त्र बन जाए जिसका यूज कर सके। दूसरा योग के लिए क्या कहा, युक्त युक्त योग के लिए क्या कहा, अचल योग अर्थात अचल हो जाए, योग की वो अवस्था आ जाए। धारणा के लिए क्या कहा, परिवर्तन शक्ति। और धारणा के लिए कहा जब ज्ञान और योग होगा तो धारणा ऑटोमेटिक होगी। और सेवा का बड़ा विस्तार किया फिर बाबा ने, सेवा में अनुभवी मूर्त अर्थात हर प्रकार से सेवा करनी है, ऑटोमेटिक सेवा होती रहे, हर समय सेवा होती रहे, मनसा से, वाचा से, कर्मना से, स्नेह के संबंध से, संपर्क से। फिर यहां पर कहा जो संबंध वाली आत्मा है, जो संपर्क वाली आत्मा है, वो भी कभी उदास हो जाए, नाराज हो जाए, वो भी कभी गिर जाए, उमंग उत्साह कम हो जाए, या फिर उनमें आप देखो कि ऐसे संस्कार जो चाहिए वो नहीं है, जो संस्कार चाहिए वो नहीं है, विवश है, परवश है, गिरी हुई है, या फिर मायूस है, ऐसे समय में क्या करना है उसके लिए, शुभ भावना, शुभ कामना। ऐसे समय में क्या करना है उसको, उठाना है। यह नहीं सोचना है, क्या नहीं सोचना है कि यह तो सुधरेगा नहीं, यह तो बदलने वाला नहीं है, इस पे टाइम वेस्ट करने से क्या होने वाला है। हरेक के प्रति शुभ भावना, हरेक के प्रति शुभ कामना। और बाबा ने कहा संगठन है, यहां पे स्वभाव स्वभाव तो हो गई, बाबा ऐसे नहीं कहते कि नहीं होगा, होगा, पर हरेक के लिए शुभ भाव, हरेक के लिए शुभ भावना। ये बहुत गहरी बात है जो यहां बाबा ने कही है सेवा में। ये सेवा वास्तविक सेवा है, सबसे बड़ी सेवा तो यही है, एक दूसरे को सहन करना, सब कुछ जानते हुए समझते हुए फिर भी ये समझना हमारा अपना है, चाहे कैसा भी है, कितनी भी गलतियां की है उसने, फिर भी क्षमा। तो ये चार बातें, आठवीं पॉइंट। नौवीं ब्रह्मा का उदाहरण, ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया है, अंत तक शुभ भावनाएं रखी, जाते समय भी तीन शब्द बोले, कौन से? निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। हरेक के प्रति शुभ भावना रखी, प्रेम रखा, प्रेम अर्थात शुभ भावना। हम कहें कि हमारा प्रेम है पर शुभ भावना ही नहीं है। प्रेम तो है परंतु ये बदलने वाला थोड़ी है। प्रेम तो बहुत है पर इसके संस्कार ही ऐसे है, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। इसको भगवान नहीं बदल सका, हम कहां से बदलेंगे? तो इसको शुभ भावना कहेंगे? नहीं। बाबा ने कहा यह सूक्ष्म घृणा है। क्या है ये भी सूक्ष्म घृणा है। अगला होमवर्क, सूक्ष्म घृणा के लक्षण क्या क्या है? सटल डिसलाइक, अति सूक्ष्म घृणा। अगर हम अपने आप को चेक करें तो शायद बहुत है। हमें कई लोग हैं जो सामने आते तो पसंद नहीं आते, अगर आके बैठ जाए और बातें करने लगे इधर उधर की जो ज्ञान योग से संबंधित बातें नहीं है, घृणा आती है उस पर, नफरत होती है उससे। या फिर तीव्र पुरुषार्थियों में घृणा किनके प्रति होती है? जो बिल्कुल पुरुषार्थ नहीं करते, जो टाइम वेस्ट करते हैं, जो घूमना फिरने में जिनको रुचि है उनके प्रति घृणा का भाव होता है। ये कुछ नहीं करते, ये भी तो घृणा है पर बड़ा ही गहरा है ये। हम अगर देखें तो शायद हरेक में घृणा भरी हुई है और हमें ही पता नहीं किस किस के लिए घृणा है, और कारण कोई खास नहीं है। किसी ने हमारा अपमान किया था बहुत पहले तो हमको उसके प्रति घृणा है, ऊपर से तो नहीं दिखाते पर घृणा है, नफरत है, सूक्ष्म घृणा है। बाबा उस गहरे तल की बातें कर रहा है, इतनी शुभ भावना तुम्हारी हो। लास्ट पॉइंट, परमात्मा परिवार, प्रभु परिवार। ऐसा बड़ा परिवार इस संसार में और कहीं पर भी नहीं है बाबा ने कहा। यह एकमात्र ऐसा परिवार है जो यहां है, ऐसा परिवार और तुमको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। प्रभु परिवार, परमात्मा परिवार, निरंतर सोचते रहो ये सबको किसने चुना, इनका मालिक सरबरा जिसको कहते हैं उर्दू में, कौन है मुखिया, सोचो। तो ऐसी 10 बातें हैं। फिर राजस्थान ग्रुप से मुलाकात की, क्या कहा? वाह मधुबन वाह, कभी सुना है पहले? शायद कम आता है ऐसा। वाह बच्चे वाह आता है, वाह साइंस वाह आता है, वाह ड्रामा वाह तो हमेशा आता है, पर क्या कहा इसमें? वाह मधुबन वाह। क्यों मधुबन की वाह वाह की? अरे राजस्थान में तो है पर वाह वाह क्यों की? क्योंकि जो आए हैं सेवा में उनको क्या कहा बाबा ने? ज्ञान के स्नान करते हो यहां पर, वायुमंडल ज्ञानी आत्माओं का है, प्रेमी आत्माओं का है, यहां ज्ञान सुनने को मिलता है, सेवा भी करते हो, दोनों चीजें होती है, सब है यहां पर। तो उस मधुबन की भी महिमा की बाबा ने, मेवा और सेवा दोनों यहां मिलता है। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहली बात ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन था बाबा का? कि ये क्या है, कौन सा परिवार है? ब्राह्मण परिवार है। और ब्राह्मण परिवार का बाबा कौन है? कौन है? रचयिता। तो ब्राह्मण परिवार का जो रचयिता है वो इस सारे ब्राह्मण परिवार में किसको देख रहा है? विशेष आत्माओं को देख रहा है, कोटों में कोई आत्माओं को देख रहा है, उन आत्माओं को देख रहा है जिन्होंने साधारण तन में आए हुए भगवान को क्या कर लिया, पहचान लिया कि ये है वो छिपा हुआ, दुनिया नहीं पहचान सकी। अब अजानंती माम मुढ़ा, गीता में है, हे कृष्ण हे अर्जुन, लोग तो मुझे पहचानते ही नहीं, अवजानंती, मूर्ख है वो जो मुझे नहीं पहचान पाते, अवजानंती। मैं जब साधारण तन में आता हूं तो बाबा ने कहा ये विशेष आत्माएं हैं, कोटों में कोई आत्मा है, इन्होंने भगवान को जाना है। ऐसे विशेष परिवार में बाप आते हैं। कौन आते हैं? जो इस संसार का रचयिता है, तो वो ये देखते हैं। और हर एक बच्चा कैसा है? अति प्यारा है और अति न्यारा है। तो ये पहली पॉइंट। दूसरी बात बताई, हम क्या चैलेंज करते हैं दुनिया वालों को कि हम योगी जीवन वाले हैं, योग लगाने वाले नहीं है, 2-4 घंटे के योगी नहीं है, चलते फिरते योगी है, निरंतर योगी है, चल रहे हैं तब योगी, उठ रहे तब योगी, नेचुरल नेचर बन जाए योगी का, सहज योगी, प्राकृतिक योगी, कुदरती योगी, नेचुरल योगी, सदा योगी, निरंतर योगी, सतत योगी, ये योगी की निशानी है। यह दूसरी बात। तीसरी बात बताई, चमकता हुआ सितारा। तो बाबा ने कहा मेरा हर बच्चा स्वमानधारी है और स्वराज्य अधिकारी है, और बाप बच्चों की ये मेहनत नहीं, बाबा को अच्छी नहीं लगती है, ये मेहनत बाबा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और जहां स्वमान है वहां पर देहभान नहीं है। अभी अभी भी स्वमानों को याद करो और एक एक स्वमान की माला फेरते जाओ तो अनेक स्वमान स्वरूप बन स्वमान में लवलीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्वमान में डूब जाएंगे अगर स्वमान ही याद करते रहो। अब दूसरा और एक होमवर्क, स्वमान की माला एक बनी हुई है ऑलरेडी, अ से अ ब क वाली, कितने हैं उसमें? बहुत सारे हैं, किताबी बनी हुई है एक, यह पीडीएफ फाइल है स्वमान का, पूरी लिस्ट है एक किसी ने निकाली हुई, अ से ये, आ से इतने, बा से उतने, बहुत बड़ी लिस्ट है। अगर वो लिस्ट भी ले लो, किसी एकांत में बैठ जाओ और एक एक को पढ़ो, स्थित हो जाओ, फिर दूसरा पढ़ो, स्थित हो जाओ, दो तीन घंटे तो आराम से निकल जाएंगे, और जब निकलोगे तो लाइट माइट बन के, क्योंकि इतने श्रेष्ठ स्वमान अर्थात हायर कॉन्शियसनेस। मनुष्य तो देहभान में जीते सारा जीवन, संकल्प विकल्प में गोते लगाते रहते, तीन चार दिन पहले साकार मुरली, तो बाबा को अच्छी नहीं लगती, और जहां मोहब्बत होती है वहां पर मेहनत नहीं होती है। तो ये तीसरी पॉइंट। चौथी बात बताई, क्या किया बाबा ने? चक्कर लगाया। कहां पर चक्कर लगाया? चारों ओर के ब्राह्मणों के पास, देश विदेश का चक्कर लगाया। मॉर्निंग राउंड, बाबा का मॉर्निंग राउंड, सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना, ये देखने के लिए कौन क्या कर रहा है, कौन कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। फिर समान याद है, सोच रहे, लेकिन समान स्वरूप अनुभवी मूर्त बन, अनुभव के अथॉरिटी स्वरूप बनने में कमी दिखाई दी। अब ये है बाबा का ऑब्जर्वेशन, यहां पर जो चक्कर लगाया उसमें कमी दिखाई दी। और तुमको अथॉरिटी देने वाला कौन है? ऑलमाइटी अथॉरिटी ने अथॉरिटी दी है तुमको, तो इसमें कोई भी प्रकार का जहां अनुभव है वहां देहभान खींच नहीं सकता। हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी, अनुभवी को माया हिला नहीं सकती। और हाँ, और एक चीज भूल गई थी, स्वमान की स्विच ऑन करो और किस में बैठ जाओ? अनुभव का स्वमान की सीट में बैठो, अनुभव का स्विच ऑन करो। जैसे प्रकाश और अंधकार का उदाहरण दिया, जहां प्रकाश है अंधकार को भगाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, वैसे यहां पर भी है। स्वमान वो प्रकाश है, अनुभव वो प्रकाश है, वहां माया नहीं आ सकती, देहभान नहीं आ सकता, तो मेहनत करनी पड़ती है, इसका ये कारण बताया। और जहां स्मृति के अनुभवी स्वरूप है वह अपने में समर्थि हर कार्य में अनुभव करते हो। फिर उसके बाद में अगली पॉइंट, कारण क्या? तो कारण यही निकला कि बाबा का जिगरी प्यार है, मेहनत देख नहीं सकते, और कारण है अनुभवी स्वरूप बन के अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। ये रोशनी का उदाहरण दो बार दिया है, और चारों ही सब्जेक्ट है उसमें अनुभवी बनना है, नेचुरल नेचर हो जाए। और फिर छठवां पॉइंट, सातवां पॉइंट, अचानक नहीं, सिक्स्थ, अचानक एवर रेडी, कि सबकी टिकट कटने वाली है, एवर रेडी अर्थात कोई भी वरदान या सम्मान का संकल्प किया और स्वरूप बना, और कोई भी वरदान को फलीभूत कर सकते हो। अब ये नहीं कहो कि पुरुषार्थी है, और ये नाम का उदाहरण, सातवां पॉइंट नाम की बात, दो उदाहरण दिए नाम के। उसके बाद में आठवां, जीवाईडीएस, चारों सब्जेक्ट में अनुभवी, ज्ञान में अनुभवी अर्थात लाइट माइट, योग में अनुभवी अर्थात कर्मेंद्रिय जीत, ये भूल गया था, कर्मेंद्रिय जीत, एक जगह कहा अचल और यहां पर कहा कर्मेंद्रिय जीत, योगी अर्थात जिसकी कर्मेंद्रिया वश में है, ये सेकंड, तो इसमें काम करना है सारे दिन भर। तीसरा धारणा, पहली दो हो गई तो ऑटोमेटिक आएगी, और सेवा में ये सारी बातें, सेवा की ये जो पॉइंट है कई बार पढ़नी है इसको, क्योंकि वास्तव में हमें शुभ भावना की कमी है। हम अगर अपने आप को चेक करें तो हमें पता चलेगा कि कई आत्माएं ऐसी है कि जिनके लिए हमारे मन में सम्मान नहीं है, जैसे कुछ कुछ आत्माएं जो हमेशा आगे आगे करती है, काम करती कुछ नहीं है पर आगे आगे करती है, जैसे हम उनको देखते हैं, ये देखो आ गए फोटो निकालने के लिए, करते तो कुछ नहीं बस फोटो निकाल, शायद हमारे मन में उनके प्रति घृणा है, हम बोलते तो नहीं है परंतु वो भी तो घृणा है, भावना का यह भी सूक्ष्म घृणा है। यह हो तो ऐसा हो, यह बदल ही नहीं सकता, यह शुभ भावना नहीं, यह सूक्ष्म घृणा भावना है। फिर भी अपना भाई बहन है, फिर भी मेरा बाबा तो कहता है ना, कैसा भी हो कहता तो है मेरा बाबा, क्लास में तो दिखता है, मुरली में भी दिखता है, अमृत वेला भी दिखता है, भले दिन भर झगड़ा करता है सबसे, चिड़चिड़ापन करता है, बात करो तो ढंग से जवाब नहीं देता, मदद मांगो तो बहाने बनाता है, मेरा बाबा तो कहता है, बस शुभ भावना रखनी है उसके प्रति भी, गिरे हुए को उठाना है, सहयोग देना है, इसे कहते हैं सच्चा सेवाधारी पुण्यात्मा। तो ये चारों चीजों में, उसके बाद में ब्रह्मा का उदाहरण दिया है, बीच में हाथ भी उठाने को कहा, कौन कौन करेंगे, सबने हाथ खड़े कर दिए, जैसे सबको समझ में आ गया बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा ने कहा था मन का हाथ खड़ा करो, दो दो हाथ खड़े कर रहे, कोई तीन तीन कर रहे। जैसे ब्रह्मा बाप ने क्या नहीं देखा, क्या नहीं किया, जिम्मेवारी होते हुए फिर भी अंत में शुभ भावना शुभ कामना के तीन शब्द की शिक्षा सभी को दी, निराकारी निर्विकारी निरंकारी, ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता भाव का वरदान जो बाप ने करके दिखाया, फॉलो ब्रह्मा बाबा। और लास्ट में प्रभु परिवार, स्वभाव नहीं देखो, बाप जानते हैं भाव स्वभाव है, लेकिन भाव स्वभाव प्यार को खत्म न करे। कितनी ऊंची बात बोल दी, सबके लिए अंतर अंदर से प्यार हो बस, अगर किसी का स्वभाव पसंद नहीं आ रहा वहां से हट जाओ, परंतु उससे झगड़ा करने से तो थोड़ा ठीक है, फिर अभ्यास करो अपनी शुभ भावनाओं को थोड़ा स्टॉक और बढ़ाओ, बजाय इसके कि लड़ना झगड़ना ही चालू कर दो। लेकिन भाव स्वभाव प्यार को खत्म नहीं करे, संबंध को खत्म नहीं करे, कार्य को सफल कर्म करे, यह राइट नहीं है। जो सेवा है उसको प्रभावित ना करे, वो प्रभु परिवार है, परमात्मा परिवार है। तो प्यार अर्थात शुभ भावना जरूर हो, कैसा भी है परमात्मा परिवार है, हर आत्मा से शुभ भावना शुभ भाव, यह परमात्मा परिवार एक के एक से एक समय ही होता है। इतना बड़ा परिवार परमात्मा के सिवा किसी का भी नहीं हो सकता है, तो चेक करो, क्योंकि यह भी पुरुषार्थ में विघ्न पड़ता है, तो विघ्न मुक्त होंगे तभी अनुभवी बन अनुभव की ऑथोरिटी द्वारा सभी को अनुभवी बनाएंगे। तो ये थी टोटल 10 बातें, इसमें से कुछ कुछ होमवर्क दिया है, बाबा को क्या क्या अच्छा नहीं लगता, एक, दूसरा चैलेंज क्या क्या करनी है, तीसरा सामान की लिस्ट पूरी बनानी है, उसकी माला और उसमें लवलीन होना है, चौथा सूक्ष्म घृणा हमारे में है या सूक्ष्म घृणा के स्वरूप क्या क्या है, ये चार चीजें होमवर्क दी है, इस पर काम करना है, लिख के रखना है और सारे दिन भर में या अगले 15 दिन तक इस पर काम करना है। और फिर लास्ट में बाबा ने राजस्थान ग्रुप से बात की, योगी आत्मा है, प्रभु प्यार वाली आत्मा है, उनका वाइब्रेशन भी ऑटोमेटिकली यहां मिलता है, एकांत का वायुमंडल भी यहां मिलता है, और अपने काम में और पढ़ाई में फायदा भी, अपने को बिजी रखते हो तो उसके थोड़े दिन में अपना भविष्य ऊंचा बनाना का चांस भी मिल जाता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें थी, याद प्यार बाबा ने चालू की और बीच में वापस मुरली चालू कर दी। तो क्या बनना है, अनुभवी मूर्त, अपने आप को अनुभव में डूबोना है, ऐसा अनुभव हो कि जैसे वो ही अंदर समाया हुआ हो। जरा तू इतना बता दे भगवान, लगी है कैसी लगा दे, मुझे में रहकर मुझे से अपने ये खोज कैसी करा रहा है, उसमें डूब जाना है। लवलीन स्थिति अर्थात बस वही वही दिखाई दे सब जगह, और कुछ समझे ही ना समझे ही ना। ओम शांति।
जरा तू इतना बता दे भगवान, कैसी लगा रहा है मुझे में रहकर मुझे से अपनी ये खोज कैसी करा रहा है। जरा तू इतना बता दे भगवान, लगी कैसी लगा रहा है मुझे में रहकर मुझे से अपनी ये खोज कैसी करा रहा है। प्रियतम प्रेम भी तुम हो तुम ही हो प्रेमी हृदय भी तुम हो तुम ही हो प्रियतम प्रेम भी तुम हो तुम ही हो प्रेमी पुकारता मन तुम्ही को क्यों फिर तू ही जो दिल में समा रहा है जरा तू इतना बता दे भगवन लगी कैसी लगा रहा है कैसी करा रहा है